First of all, I want to thank you for inviting me.
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे निमंत्रण दिए.
I feel honored to be here.
यहां पर रहते हुए मैं बड़ा सम्मानित ऐसा महसूस कर रहा हूं.
I have been so touched in my life through Indian believers.
भारतीय विश्वासियों के जीवनों के द्वारा मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव प्रभु ने डाला है.
It was through the ministry of Brother Bhak Singh and Brother T.E. Koshi that taught me the Word of God.
भाई भक्त सिंह और भाई टी कोशी जो प्रभु के पास महिमा में है उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे वचन सिखाया.
I am so thankful for what those Indian men brought to me.
उन भारतीय विश्वासियों ने जो कुछ मुझको दिए हैं उसके प्रति मैं आज तक वफादार और विश्वास योग्य बना हूं.
You may think that the ministry of Brother Bhak Singh has only influenced India and Pakistan, the Indian subcontinent.
आप सोचते होंगे कि भाई भक्त सिंह की जो सेवकाई है केवल भारतीय देश में और बाजू के पाकिस्तान में प्रभाव डाला है.
But it influenced me in the United States.
लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के मैं रहने वाला मुझ पर भी बहुत प्रभाव डाला है.
And it is because of the ministry of Brother Bhak Singh that I am here today.
और केवल ये भाई भक्त सिंह की सेवकाई का फल है कि आज मैं आपके बीच में पाया जाता हूँ.
I thank you.
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ.
I am honored and humbled to be here.
आज आपके बीच में खड़े होकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और बड़ा नम्र हो गया हूँ.
And I want to thank all those who have helped to set up this place and organize this meeting.
और मैं उन सबों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये पंडाल बनाया और इन सभाओं के लिए मेहनत परिश्रम करते हुए सब प्रकार की तैयारियां किए हैं.
Something like this is not organized in a simple way. It is very hard.
इस पैमाने पे जो तैयारियां हुई है ये कोई साधारण बात नहीं है और बहुत ही कठिन काम है.
And as the word of God says, those who honor me, I will honor.
और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेंगे मैं भी उनका आदर करूंगा.
May God honor you and reward you for your faithfulness.
आपके विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर आपका आदर करे और आपको प्रतिफल दे.
And I must also mention that my wife is from Pakistan.
इस बात को मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ मेरी प्रिय पत्नी पाकिस्तान की है.
She was born into a Christian home in Pakistan and her father was deeply influenced by the ministry of Brother Bhak Singh.
उनके पिताजी मतलब मेरे ससुर जी पाकिस्तान में विश्वासी परिवार के हैं. मेरी पत्नी उसी में जन्म ली है. उनके पिताजी भी भाई भक्त सिंह की सेवकाई के द्वारा बड़े प्रभावित हुए.
So in many ways I feel like I'm coming home.
बहुत दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आया हूं.
We are family.
हम सब इस परिवार के हैं.
Now we begin with the Bible study. The theme for the morning Bible study is from Matthew chapter 4 verse 4.
आज सुबह का जो मुख्य शीर्षक है बाइबल अध्ययन के लिए मत्ती सुसमाचार 4 का 4 चौथा अध्याय चौथा वचन.
बाइबल But he answered and said, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God.
यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही के द्वारा नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा।
On every word that proceeds from the mouth of God.
हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है।
I was born into a Jewish home.
मैं एक यहूदी परिवार में जन्म लिया था।
And Jesus is my Messiah.
और यीशु मसीह मेरा मसीहा है।
In Judaism, we say that. Not just every word, but every dot, every period is spoken by the word of God.
Yahudi mat ke anusar, mobiles band kar dijiye please. Yahudi mat ke anusar, hame sikhaya jata hai bachpan se, na keval har ek vachan, lekin har ek bindu, har ek pika parmeshwar ke mukh se nikla hai.
We live by every word that proceeds out of the mouth of God.
परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के कारण हम जीवित हैं।
We live by that word.
हम उस वचन के कारण जीवन जीते हैं।
Every word in the Bible is true.
हर एक शब्द वचन जो बाइबल में है सच है।
If we take anything as being untrue, we will lose our power.
प्रियो, एक भी ऐसा कोई शब्द है जो असत्य है, तो उसके द्वारा हम अपने शक्ति को खो देते हैं।
I am a scientist, and in the sciences, they think that many things in the Bible are not true.
मैं एक वैज्ञानिक हूँ। और वैज्ञानिक लोगों का ये सोच है कि बाइबल की बहुत सारी बातें सच नहीं है
But the Bible has proven to be true over and over and over again.
बारंबार बारंबार सदियों से लेकर इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है बाइबल का हर एक वचन सत्य है
I have addressed this very specifically within the sciences, and many of those videos are on YouTube.
जो कई बार मैं बहुत ही निश्चित रूप से कुछ विषयों पर, चाहे YouTube पे हो, चाहे वीडियोस के ऊपर हो, मैं इनके ऊपर टिप्पणी करता हूँ।
अनेक बार लोग इंटरनेट लोग अनेक YouTube लोग ना करने वीडियोस लोग में तो संपर्क तो असली में टूटा
And nobody has ever challenged me when I show that science aligns with the Bible.
और जब उन बातों पर टिप्पणी करते हुए मैं इस बात को प्रमाणित करता हूँ कि विज्ञान और पवित्र शास्त्र बाइबल दोनों में मेल खाता है, तो आज तक किसी ने मेरा विरोध नहीं किया।
Long after the scientists are dead and gone, this word will remain.
वैज्ञानिक आए और चले गए, लेकिन परमेश्वर का वचन आज तक अटल है।
And this is how we live by every word that proceeds out of the mouth of God.
और इस रीति से प्रियो हम अपना मसीही जीवन बिताते हैं उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है।
You take a man or a woman who meditates daily on the word of God.
एक ऐसे पुरुष को या स्त्री को अब ध्यान दीजिए जो हर रोज परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है।
And they are overflowing with life.
प्रियो उनका जीवन एकदम जीवन से ओत प्रोत हो गया उमड़ता रहता है।
You take a man or a woman who spends little time in the Word of God.
और आप उस पुरुष को स्त्री को ध्यान से देखिए जो परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा समय बिताते हैं.
And they live a defeated life as if there's no life within them.
और ऐसा वो जीवन बिताते हैं प्रियो, ऐसा वो प्रकट होते हैं कि उनके अंदर कोई जीवन है ही नहीं.
We live by every word that proceeds out of the mouth of God.
परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा हम जीवन बिताते हैं.
I remember Brother Bhakt Singh used to teach us to hear the voice of God.
मैं स्मरण करता हूँ प्रियो, भाई भक्त सिंह हमको आरंभ के दिनों में सिखाया करते थे कि परमेश्वर के वाणी को सुनना जरूरी है.
He said that when you spend time in prayer, you also ask God to speak. Speak to me, Lord.
और जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम इस बात को उससे मिन्नत करते हैं, हे प्रभु जी, तू मुझसे बातें कर, तू मुझको अपनी वाणी सुना.
I learned how to hear the voice of God from Brother Bhakt Singh and Dr. T.E. Koshy.
भाई भक्त सिंह के द्वारा, भाई कोशी के द्वारा मैंने सीखा प्रियो परमेश्वर की वाणी को कैसे सुनना है.
They used to tell me you get with your Bible on your knees and you say, Lord, speak to me from this passage today.
और उन्होंने मुझे ये सिखाया था जब कभी बाइबल खोलते हो पढ़ने के लिए घुटने पर आना और प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु जी जो भाग मैं आज पढ़ रहा हूँ उसके द्वारा तुम मुझसे बोल, मुझको मुझसे बातें कर, मुझको अपनी वाणी सुना.
And this word will begin to speak to your heart.
और वास्तव में ये वचन जो आप पढ़ते हो घुटनों के बल आपसे बोलना शुरू करेगा आपके हृदय से.
When I teach on Saturday morning, I will give you specific examples from my own life where God has spoken to me clearly through the scriptures.
शनिवार के सुबह जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए फिर आऊंगा तो मैं आपको निश्चित उदाहरणों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ कैसे प्रभु ने मुझसे अपने वचनों के द्वारा बातें किया.
Brother Bhakt Singh used to say you will hear a still small voice.
भाई भक्त सिंह कहा करते थे तुम एक मीठी और धीमी वाणी को सुनोगे.
And he would take me back to 1 Kings chapter 19 verse 11 through 13.
और मुझको बताते थे पहला राजा 19 अध्याय उसके 11 से 13 वचन की ओर उसने मुझको आकर्षित किया.
And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and a strong wind rent the mountains, and break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake.
उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था. फिर आंधी के बाद बड़ा भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था.
First Kings chapter 19 verse 12, and after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire a still small voice.
पहला राजा 19 अध्याय 12 वचन, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था. फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया.
पहला
Brother Bhak Singh used to say it this way,
a still small voice.
Aur bhai Bhak Singh is tarike se kaha karte the, ek dheema meetha vaani.
Though he is dead, he still speaks.
Bhai Bhak Singh mar chuke hain priyo, to bhi wo humse baatein karte hain.
When I read this passage, I immediately remember back to Brother Bhak Singh.
Jab main is bhag ko padhta hu, turant mujhko unki yaad aati hai.
He used to say, listen to the Lord, he has a still small voice.
Aur wo kaha karte the, sunna seekho, kyunki prabhu meethi dheemi vaani se dabe hue swar mein humse baatein karta hai.
When we read the word of God, say, Lord, speak to me through this passage.
Jab hum parmeshwar ke vachan ko padhne lagte hain priyo, hum bade hriday ki gehrai se kehte hain, hey prabhu ji, is baat se tu mujhse baatein kar.
And I took the same pattern that he taught me. I read from Genesis chapter 1 through Revelation chapter 22.
Bible padhne ka jo kram usne hame sikhaya tha, main aaj bhi usi kram ka palan karta hu. Utpatti ki pehle adhyay se lekar seedha padhta hua Prakashit Vakya ke 22 adhyay tak.
Bible mein ye likha samvalo ye roz ko samvatsya le kar ek Krishna are aaj mein mode adhyay mein jo koi friend ka 22 adhyay var ko varsha ka chalunga.
And I just pick up reading where I left off the day before.
Aur pichle din maine jo jis bhag ko chhoda tha wahan se fir main shuru karta hu.
This is the way Brother Bhak Singh taught me to read the Bible.
Is tarike se Bhai Bhak Singh ne mujhe parmeshwar ke vachan ko padhna sikhaya.
People say to me, you read the Bible from beginning to end?
Log mujhse poochte hain hairan hokar, kya bhaiya tum Bible ko aaram se lekar ant tak padhte ho?
I say, of course, how else should you read the Bible?
Haan, main kehta hu sachmuch aisa hi Bible padhna chahiye.
And the Lord speaks to me each day, wherever I am in the Bible.
Priyo, jis bhag ko main padhta hu, usi bhag se har roz prabhu mujhse baatein karta hai.
He is a living God.
Wo jeeta parmeshwar hai.
He speaks through the word of God.
Parmeshwar ke vachan ke dwara wo humse bolta hai.
Look at the Bible over and over again. It says, the Lord said, the Lord spoke, the Lord said, the Lord spoke, again and again.
Dhyan denge priyo, Bible mein kai baar isko dohraya gaya. Parmeshwar ne kaha, Parmeshwar ne apne vachan ko kaha, Parmeshwar ne ye aisa kaha.
The Lord speaks through the word of God.
Parmeshwar apne vachnon ke dwara humse baatein karta hai.
For each situation that we are in, he will speak.
Har ek paristhiti mein se jab hum jaate hain uske anusar wo humse baatein karta hai.
You may say, you don't know the difficulty that I'm having with my finances.
Aap bolte honge, आर्थिक संकट जो मेरे पर टूट पड़ी है शायद आप उसको नहीं समझते.
But God knows and He understands and He speaks.
लोग जाने या ना जाने पियो परमेश्वर जानता है, वो समझता है और उसके अनुकूल वो बातें करता है.
Take the word of God, get on your knees and say, Lord, speak to me through the scriptures this morning. Speak to me, O Lord.
जब वचन को अपने हाथों में लेते हो प्रियो, घुटने में आकर प्रभु से आग्रह विनती करिए, हे प्रभु जी, बोल मुझसे, इस भाग से तुम मुझसे बातें कर.
When I tell Americans to read the Bible on their knees, they don't understand me. But you understand.
अमेरिका के रहने वाले लोगों से जब मैं कहता हूँ कि अपने घुटनों के ऊपर तुम्हें बाइबल पढ़ना है तो उनको बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन ये बात आपको अच्छे से मालूम है।
It's God's word. It's a holy word.
ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र वचन है।
And it's a personal word. He speaks to us personally.
और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए उसने लिखा है, व्यक्तिगत रूप से आपसे बोलता है।
Jesus had you in mind when he died on that cross. It's personal.
जब कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्राण दे रहे थे प्रियो, व्यक्तिगत रूप से उसने आपके विषय में सोचा।
In God's view, everybody has the same worth.
परमेश्वर की दृष्टि में हर किसी की एक ही कीमत है।
His son died on the cross for each of you.
उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक के लिए अपना प्राण दिया।
He loves you.
वो आपसे प्रेम करता है।
It is the greatest expression of love that anyone could ever show.
इस दुनिया में यदि प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई दे सके तो केवल परमेश्वर का वो प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया।
For all of you who are parents, you understand the love that you have for a child.
यहाँ जितने माता पिता बैठे हुए हैं, आपके बच्चों के लिए आपके मन में जो प्रेम है उसको आप अच्छे से जानते हैं।
If there's ever any harm going to come, you put this child behind you. You say, "Hurt me, don't hurt my child."
और यदि कोई नुकसान या कोई अपघात की बात आ जाती है, तो आप अपने बच्चों को निकालकर पीछे छिपा लेते हो और उस मुसीबत को आप खुद सह लेते हो।
Everybody understands the love for their child.
हर कोई अपने बच्चे के लिए प्रेम मन में समझता है।
For 10 years I went into maximum security prisons preaching the gospel.
10 सालों तक मैं एक बंदी गृह में सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था।
There were some times when I couldn't get a man's attention.
और कभी-कभी ऐसा होता था कि मनुष्य का ध्यान मैं आकर्षित नहीं कर सका।
So I would say to them, "Do you have a child that I can pray for?"
तब मैं उनसे पूछता था, क्या आपका कोई बच्चा है, बेटा या बेटी, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं?
And right away they would stop and look at me.
और उस समय अपने विचलित ध्यानों को शांत करते हुए मेरी ओर वो देखते थे।
Everybody understands the love for a child.
हर कोई अपने बच्चे के लिए प्रेम को समझता है।
And God took His Son and had Him die for you.
और परमेश्वर ने अपने बेटे को उठाया, क्रूस के ऊपर लटका दिया, किसके लिए? आपके लिए।
It is the greatest expression of love.
प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है ये।
He longs to speak to you.
प्रियो, परमेश्वर के मन की इच्छा कि वो आपसे बातें करे।
So when you say, "Lord, speak to me," you are aligning with His own heart.
ओ प्रियो, जब आप कहते हैं, हे प्रभु जी, मुझसे बातें कर, तो उसके मन के विचारों के साथ आप एक हो जाते हैं।
And he speaks in a still small voice.
और जब वो बातें करता है तो दबे हुए स्वर में धीमे शब्द से कहता है।
Whatever your trouble is, he will speak to you.
आपकी मुसीबत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आपसे बातें करेगा।
Are you having problems in your marriage? He can speak into that.
क्या आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है? प्रभु उस विषय में भी बातें करेगा।
समस्या When I speak on Saturday, I'll show you specific examples where he's interceded, even in my own marriage.
शनिवार के दिन जब मैं आपसे बातें करूंगा तब मैं आपको निश्चित उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने मेरे भी वैवाहिक जीवन में मुझसे बातें किया और मुझको सलाह दिया.
Where he speaks specific words right into the midst of a situation.
प्रिय परिस्थिति के बीच में जैसी हमारी आवश्यकता होती है निश्चित वचन के द्वारा वो हमसे बोलता है.
The primary way that we hear the word of God is through the scriptures.
प्रिय मूल रूप से एक ही तरीका है परमेश्वर के वाणी को सुनना, उसका वचन है.
And he'll take the most obscure passage and speak to your heart through that very word.
और प्रियो जो भाग को पढ़ते हैं उसी में से एक ऐसा वचन, एक ऐसा विचार प्रभु निकाल कर आपके हृदय से बातें करेगा.
Just as Brother Bhak Singh and Dr. Koshy taught me, I am sharing with you.
जैसे भाई भक्त सिंह और भाई कोशी मुझको सिखाते थे, वही बातों को मैं भी आपके साथ बांट रहा हूँ.
What I'm bringing to you is really what an Indian man brought to me.
जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, वही बात एक भारतीय व्यक्ति ने मेरे पास लेकर आया था.
I have no special word on my own. These are from men of God from India.
मेरे पास कोई ऐसे बहुत विशिष्ट रूप से बोलने की बातें नहीं है, लेकिन भारतीय पुरुषों के द्वारा प्रभु ने मुझको ये बातें सिखाया.
And then when he speaks through the word of God, all of a sudden it's followed by extreme peace.
प्रियो जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है तो तुरंत उसके पश्चात बड़ी शांति मिलती है.
As you're reading the page, your eye will keep being drawn back to some verse.
और जब आप उस पन्ने को पढ़ते रहते हैं, बारंबार आपकी आंखें, आपका ध्यान उस वचन के प्रति या उस शब्द के प्रति आकर्षित होता रहेगा.
You say, "Yes, Lord, thy servant is listening. What is it, Lord? Speak to me."
और जब हम कहते हैं, हाँ प्रभु जी बोल, मैं तेरा दास सुन रहा हूँ.
And then he begins to bring light from that very word.
और फिर तब उसी में से, उसी वचन में से वो सही बातों को निकालता है.
To those who seek, they will find.
जो ढूंढते हैं वो पाते हैं.
The problem is that most believers never seek for God to speak through the scriptures.
समस्या ये है प्रियो कि अधिकांश विश्वासी जो कहलाते हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने की अभिलाषा नहीं रखते.
It's because they've never been taught to hear the word of God.
कारण यह है कि उनको परमेश्वर की वाणी कैसे सुनना नहीं सिखाया गया.
What I have learned in 40 years of teaching others is that if you teach them, they will generally respond.
40 सालों के दौरान जो मैं दूसरों को सिखाता रहा उसमें मैंने ये सीखा प्रियो, यदि आप नियमित रूप से सिखाते रहोगे एक न एक दिन वो सही उसका प्रत्युत्तर देंगे.
Most people have never been taught how to hear God's voice through the scriptures.
वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा कैसे परमेश्वर की वाणी को सुनना है बहुतों को नहीं सिखाया गया.
And because they've never been taught, they pick up the Bible and they just look at it as if they're reading any book.
प्रियो इसलिए कि उनको परमेश्वर की वाणी सुनना नहीं सिखाया गया। बाइबल उठा लेते, कोई से भी पन्ना खोल लेते हैं, जैसे अन्य किताबों को पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेते हैं।
They don't realize that God's word is different than any other book.
इस बात को महसूस नहीं करते प्रियो, समझते नहीं है कि ये जो परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल हम कहते हैं अन्य किताबों से बहुत ही अलग है।
We live by every word that proceeds out of the mouth of God.
हमारा जीवन उस वचन के अनुसार है, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है।
This word of God is our life.
ये परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है।
When we neglect it, we destroy our own life.
प्रियो, जब इस वचन की हम उपेक्षा करते हैं, उसका निर्लक्ष्य करते हैं, अपने जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं।
I ask you, ask the Lord to speak to you through the Word of God.
मैं आपको प्रियो बोलता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप प्रभु से पूछिए, आप प्रभु से मिन्नत करिए कि वो आपसे बातें करे।
But we must take time to hear the voice of God through the Scriptures.
लेकिन प्रियो पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि परमेश्वर की वाणी को हमें सुनना है, उसके लिए पर्याप्त समय देना है।
The scriptures say that Jesus, in Mark chapter 1, it says that he used to go up to a mountain while it was still dark and go there to pray.
मरकुस का पहला अध्याय में ऐसा लिखा है, भोर जब अंधेरा ही था उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे।
While I was in college, I would wake up before all my roommates and all the other guys in the discipleship house.
प्रियो, जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे roommates मतलब मेरे कमरे में जितने साथी थे, उन सब के जागने से पहले मैं जाग जाता था।
I lived in a house that was owned by Dr. T. E. Koshy.
मैं एक ऐसे घर में निवास करता था जो भाई टी कोशी का था।
It was a discipleship program.
वहां पर discipleship program हुआ करता था।
There were 10 young men in that house.
और उस घर में 10 जवान लोग रहते थे।
And nothing worked well.
और कुछ भी ठीक से चलता नहीं था।
The showers didn't work, the bathrooms didn't work.
केवल 10 लोगों की बात है, ध्यान से सुनिएगा। शावर बात में नहीं चलता था और नल बात काम नहीं करते थे, बहुत सारी बातें ठीक से नहीं चलती थी उस कमरे में।
And Syracuse, that city is very cold in the winter time.
और ठंडी के मौसम में सिरिक्यूज जो शहर है, सिरिक्यूज बहुत ही ठंडी होती थी, पड़ती थी वहां पर।
And every night, sometime in the middle of the night, the furnace would stop working.
और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बीच रात के समय ठंडी में वो जो हीटर है, फर्नेस है, काम करना बंद कर देता है।
And I would wake up in the morning, I could see my breath.
और जब मैं सुबह उठता था तो मेरे मुंह से वो भाप निकलता था।
And I would go down to the basement, shivering, to relight the furnace.
और मैं उस basement में जाकर तहखाने में उस furnace को मतलब वो heater को फिर से शुरू करने की कोशिश करता था।
I was always the one who had to do it because I was the first one awake.
क्योंकि सुबह सबसे पहले मैं ही जागता था, तो मुझको ही ये काम करना पड़ता था।
But I have no regrets because I had precious time with the Word of God.
लेकिन इसके विषय में मुझको कोई भी चिंता नहीं थी प्रियो, क्योंकि उस समय मैं अपने प्रभु के साथ बहुत ही अनमोल समय बिताता था।
आज के उदयकाल में ये चीजें जानने की जरूरत है कि पंडित चिंतों में क्या बोले, इसलिए उदयकाल में नौ होने में
You can take a group of young people, young women or young men, and you can always see among them who is spending time with the Word of God.
किसी भी जवान बच्चों में से, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके झुंड को आप देखोगे, आपको भी मालूम पड़ जाएगा कौन है वो बच्चा, कौन है वो जवान जो प्रभु के साथ समय बिताता है.
Their lives are different because of the Word of God. Their lives are different.
उनके जो जीवन है और लोगों से भिन्न है क्योंकि वो प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं.
We live by every word that proceeds out of the mouth of God.
परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं.
When you spend time with God, God begins to speak into your life.
जब प्रभु के साथ समय बिताना हम शुरू करते हैं, प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू करता है.
In John chapter 7, verse 37 and 38.
John 7:37 and 38.
Now on the last great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his innermost being will flow rivers of living water."
पर के अंतिम दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी.
It was the last day of the feast, and it was called the great day of the feast.
इसको बड़ा दिन कहते थे क्योंकि पर्व का आखिरी दिन था ये.
The scriptures say that Jesus stood and cried out.
पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर ऊंची आवाज से पुकार कर कहने लगे.
This is an unusual way to teach for a Jewish teacher.
एक यहूदी शिक्षक के लिए, गुरु के लिए सिखाने का एक बहुत ही अजीब तरीका है ये.
Christians stand when they preach the word of God.
मसीही लोग, क्रिश्चियंस जो है, जब परमेश्वर का वचन सिखाते हैं तो वो खड़े होकर सिखाते हैं.
The Jewish teacher sits.
और लेकिन यहूदी शिक्षक सिखाते समय बैठता है.
That's why the word says Jesus went in the synagogue, he sat and he taught.
और यही कारण है प्रियो कि लूका के 4 में भी लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गए तो उनके बीच बैठकर वो बोलने लगा.
He went into the boat, he sat and he taught.
और जब वो वहां पर आराधनालय में गया तो वहां पर बैठा, उसने किताब जब उसको दे दिया, बैठकर रोलने लगा.
That is the typical Jewish teaching method.
प्रियो, यहूदी गुरुओं का सिखाने का एक बहुत ही एक सही तरीका है.
But in this case, Jesus stood.
लेकिन इस संदर्भ में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ.
And he cried out.
और ऊंची आवाज से पुकारा.
If anyone is thirsty,
यदि कोई प्यासा हो,
we must have a thirst for the word of God.
परमेश्वर के वचन के लिए हमारे मन के अंदर एक प्रकार की प्यास होनी चाहिए.
Will we rise up early to spend time with him?
और इसलिए जब हम भोर को परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उठते हैं,
When I got married and had children, I realized that children wake up very early.
प्रियो जब मैं मेरी शादी हुई और बच्चे हुए तब मैंने महसूस किया कि बच्चे भोर को नहीं उठते.
They wake up or don't wake up?
They wake up.
हाँ देवर. बच्चे भी भोर को उठते हैं.
So I had to get up even earlier in order to have my time with the Lord.
और बच्चों को उठने से पहले मुझको उठना पड़ता था ताकि मैं प्रभु के साथ समय बिताऊं.
We must have a thirst for the Word of God.
परमेश्वर के वचन के लिए हमारे मन के अंदर प्यास होनी चाहिए.
The Bible says if anyone is thirsty, anyone.
ये बाइबल कहती है यदि कोई कोई भी यदि प्यासा हो.
Man, woman, child, old, young, anyone, if anyone is thirsty.
जो कोई चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जो कोई प्यासा हो.
It doesn't matter your nationality, it doesn't matter your financial status, if anyone is thirsty.
आप किस देश के हैं, आपके आप गरीब हैं या आप अमीर हैं या आप किसी भी ओहदे को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जो कोई
Let him come to me and drink.
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे पास आए और मुझसे पिए.
He doesn't say, oh, you've come to me, I'm not going to give you anything today.
वो ऐसा नहीं कहता. ठीक है जब तुम मेरे पास आए तो आज देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास.
If anyone is thirsty, let him come to me and drink.
यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मुझसे पिए.
You can drink from the Lord, from the Word of God.
आप परमेश्वर के वचन से जितना चाहे उतना पी सकते हो.
John 7:38 says, He who believes in me.
योहन्ना के 7:38 में कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है.
We must believe in Jesus.
हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है.
Without believing in Jesus, you will never understand what it is to hear the voice of God through the scriptures.
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए बगैर उसके पवित्र शास्त्र के अनुसार वाणी को सुनना क्या है आप बिल्कुल नहीं समझोगे.
Before I was a believer in Jesus, as a Jewish boy, I tried many times to pick up the Word of God and read it.
प्रियो जब मैं मसीह नहीं हुआ था जब मैं यहूदी लड़का था उस समय कई बार मैंने कोशिश किया कि पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को मैं मनन करूं या उसको सीखूं.
But it did not make any sense to me.
प्रियो लेकिन शब्दों को पढ़ता तो था लेकिन उसका मतलब क्या मुझको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था.
I could not understand why people were so interested in this book.
मुझको समझ में नहीं आता था कि लोग इस किताब में इतनी रुचि क्यों रखते हैं.
He who believes in me, it starts with belief in Jesus Christ.
कहता जो कोई मुझ पर विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये बातें आरंभ होती है.
Once we believe on Him, the Word of God is opened up to us.
एक बार हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर दिया तो पवित्र शास्त्र के वचन अपने आप खुलने लगते हैं.
विश्वास
Tonight, during the gospel message, and especially Saturday night, I will underscore this necessity to believe on the Lord Jesus Christ.
शनिवार के शाम को भी सुसमाचार की सभा होगी. इस बात को मैं बड़े जोर से प्रभाव के साथ बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना कितना अनिवार्य है.
If you've never invited the Lord Jesus Christ in your heart, do it now.
यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में कभी निमंत्रण नहीं दिए, अभी इसी समय कर सकते हैं.
Say right now, Lord, forgive me, a sinner, and come into my life.
इसी समय कह लीजिए, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे और इसी क्षण मेरे हृदय में तू आ जा.
It all starts with belief on the Lord Jesus Christ.
ये जीवन की सारी शुरुआत विश्वास से होती है.
Do it now, don't wait.
प्रियो इसको देर न करें, अभी उस काम को पूरा करें.
He who believes in me, as the scripture has said,
जो मुझ पर विश्वास करता है जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है.
As the scripture has said,
जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है.
Nothing can ever fail if the scripture says it's going to happen.
पवित्र शास्त्र में यदि कोई वचन कह दिया गया प्रियो, तो बिना चूके वो पूरा होगा.
The word of God has said it, it has to come true.
यदि वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तो ऐसा ही होना है.
He who believes in me, as the scripture has said,
जो मुझ पर विश्वास करता है जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है.
When the scripture says it, it will come to pass.
यदि पवित्र शास्त्र में लिख दिया गया वैसा ही होगा.
Many times people will tell you things, I'll do this, I'll come, I'll go. They don't follow through.
कई बार तो लोग हमको आश्वासन देते हैं, मैं आऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर सकते.
But when God says it, it has to happen.
लेकिन जब परमेश्वर कहता है उसको वैसा ही होना है.
The whole universe must obey at his command.
सारा ब्रह्मांड प्रियो उसकी आज्ञा का पालन जरूर करना है.
He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water.
जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पेट में से, उसके भीतरी जीवन में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी.
From his innermost being, deep within our spirit, it will happen.
प्रियो ऐसा पेट के अंदर से में से मतलब भीतरी मनुष्य के अंदर हमारे आत्मा के अंदर से वो जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी.
From his innermost being will flow rivers of living water.
उसके भीतरी जीवन में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी.
This is the life that we're talking about. The word of God says that his word is life.
ये वो जीवन है जिसके विषय में हम कहते हैं प्रियो, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है ये वचन ही हमारा जीवन है.
Forever, it says in Psalm 199, verse 89.
भजन संहिता 119 और उसके 89 में ऐसा लिखा है.
Forever, O Lord, your word is settled in heaven.
हे परमेश्वर यहोवा, सदाकाल के लिए तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया.
यहोवा के वचन नित्य हो निरंतर कायम रहे.
Once he says it, it has to happen.
एक बार उसने कह दिया, वैसा ही होना है.
As the scriptures said, from his innermost being will flow rivers of living water.
जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके पेट में से जीवन के जल की नदियां फूट
निकलेंगी.
It has to happen.
वैसा ही होना है.
You put this word of God in your life and life will come through you.
इस परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में जमा करिए, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर से बहने लगेगा.
The scriptures also tell us that Jesus is the word of God.
और परमेश्वर का वचन ये भी हमें कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है.
Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God created the heavens and the earth.
उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसके पहले वचन में और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया.
In the beginning God created the heavens and the earth.
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया.
John chapter 1 verse 1 and 2.
Yohanna Sushamachar pehla adhyay 1 aur 2.
It says, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him nothing came into being that has come into being.
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई.
Says in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word.
योहन्ना का एक अध्याय एक वचन लिखा है, आदि में वचन था.
He was already in the beginning.
आरंभ में पहले से ही वो था.
When God is creating in the heavens and the earth in the beginning, the word is already there.
आदम आदि में जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बना रहा था तो परमेश्वर उस समय वचन था पहले से.
In the beginning was the word. It already existed.
प्रियो पहले से ही अस्तित्व में था, आदि में वचन था.
And the word was with God and the word was God.
परमेश्वर के साथ वो वचन था और वो वचन ही परमेश्वर था.
And in John chapter 1 verse 14, and it says, and the word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory. Glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
14 वचन में कहता है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा.
I understand that Pune is a great center for information technology and software development. Is that true? Yes. How many of you are... Go ahead. You.
मैंने सुना कि पुणे का जो शहर है इंफॉर्मेशन आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही प्रख्यात जगह है.
How many of you are involved in the software industry, information technology software?
Software में कितने लोग हैं? हाथ दिखाइए पुणे के.
Anyone else?
और कोई है?
Not too many.
They're working.
They're working. Okay. This word is primary. This word is the information by which all of this came forth.
प्रियो, जो information हम कहते हैं, जानकारी कहते हैं, वो इस वचन से आया, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ.
हाँ, ये information technology ये रहते हैं हम यहाँ हो, अलावा समाचार के अंदर देव वाक्य में भी वचन दे.
Scientists wonder how did the beginning begin, what was the word behind it? What was the information behind the beginning?
प्रियो, ये जो वैज्ञानिक है अपना माथा पच्ची करते हैं और इतना ज्यादा वो परेशान होते हैं कि क्या वो शब्द है, क्या वो वाणी है, क्या वो जानकारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही था कि सब कुछ सृष्टि होगी.
The Bible reveals to us that it was the Word of God that started all of this.
लेकिन बाइबल हमको कितना स्पष्ट कहती है, ये वचन था जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ.
Turn in your Bible to Deuteronomy chapter 17, verse 14.
पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और उसका 14 वचन.
Deuteronomy chapter 17, verse 14 says,
and
we're going to read verse 14 through verse 20 in segments. Verse 14 says, when you enter the land which the Lord your God gives you, and you possess it and live in it, you say, I will set a king over me like all the nations who are around me. You shall surely set a king over you, whom the Lord your God chooses, one from among your countrymen. You shall set as king over yourselves. You may not put a foreigner over yourselves who is not of your countrymen. 16? Now I'll read, I'll read through 17. Moreover, he shall not multiply horses for himself, nor shall he cause the people to return to Egypt to multiply horses, since the Lord has said to you, you shall never again return that way. He shall not multiply wives for himself, or else his heart will turn away, nor shall he greatly increase silver and gold for himself. So read 14 through 17.
बारी बारी पढ़ लेते हैं 14 से 18. मैं 14 पढ़ता हूँ, सब मिलकर 15 पढ़िएगा. जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा. और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हों, और क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा कि तुम उस मार्ग में फिर कभी न लौटना.
Okay, through 17. Okay, you're done?
Yes.
Okay. So he's telling them in verse 14, when you enter the land which the Lord your God gives you.
अब परमेश्वर यहोवा अपने छुड़ाई हुई प्रजा से कहते हैं, जब उस देश में तुम प्रवेश करो जो देश तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है.
They are in the wilderness at this time.
इस समय प्रियो वो जंगल में हैं.
But he promised them, you will enter the land.
लेकिन उसने उनको प्रतिज्ञा दिया, तुम जरूर उस देश में प्रवेश करोगे.
And the Lord your God will give it to you.
और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वो देगा.
It has to come about.
ये जरूर पूरा होना चाहिए.
Remember, we're reading this after the fact, but they had not yet come into the land.
प्रियो, इस बात को महसूस करिए, ये जो वचन का भाग है पूरा होने के बाद हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो तब तक पूरा नहीं हुआ था.
They are still in the wilderness, yet God says, when you enter the land.
अब वो जंगल में ही है, लेकिन परमेश्वर कहता है, जब तुम उस देश में प्रवेश करो.
This for them was a promise.
ये उनके लिए प्रतिज्ञा थी.
The children of Israel had a promise from the Lord.
इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा मिली थी.
If you read the word of God, he will give you promises.
यदि आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आपको भी प्रतिज्ञा देगा.
and every one of his promises will come true.
और हर एक प्रतिज्ञा जो प्रभु आपको देता है वो जरूर पूरा होगा.
So he says, when you enter the land that the Lord your God gives you,
जब वो देश में प्रवेश करो जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देगा.
The Lord gives it to you.
परमेश्वर खुद आपको देगा.
What do we have that the Lord did not give us?
कौन सी ऐसी बात आपके पास है प्रियो जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया?
Everything we have is a gift from God.
जो कुछ हमको दिया हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है.
Do you have your health? It's a gift from God.
यदि प्रभु ने आपको अच्छी स्वास्थ्य दी है वो परमेश्वर का वरदान है.
Do you have children? It's a gift from God.
यदि प्रभु ने आपको बच्चे दिया है वो भी परमेश्वर का वरदान है.
So many times I get in my car in the morning, I say, thank you, Lord, for this car.
कितने बार जब मैं अपने कार में बैठता हूं तो प्रभु से कहता हूं, हे प्रभु जी, ये कार तूने मुझे दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं.
He says, and when the Lord gives this to you and you possess it and live in it.
और कहता है जब तुम्हारा परमेश्वर ये हुआ तुमको दो और तुम उस भूमि को अपने वश में कर लो और तुम उस भूमि में रहने लगो.
He says you will possess it and you will live in it.
उस देश को तुम अपने वश में कर लोगे और तब उसमें जीने लगोगे.
This is a gift from God.
ये परमेश्वर का वरदान है.
And now the people will say, I will set a king over me like the nations that are around me.
और तब वे लोग कहेंगे और जातियों के समान हम भी अपने ऊपर एक राजा मांगते हैं.
God had wanted them to live differently. He wanted to be their king.
प्रियो परमेश्वर की बड़ी इच्छा थी कि ये मेरी छुड़ाई हुई प्रजा और जातियों से अलग जीवन बिताए. वे मैं उनके ऊपर राजा बनूं.
But he said, I know that when you get in that land, you're going to say, I want to be like the other people and have a human king.
प्रभु को पहले से मालूम था उस देश में जब तुम प्रवेश करोगे तो तुम ये बात जरूर कहोगे और जातियों के समान हम भी अपने ऊपर एक राजा मांगते हैं उनके समान तुम जीना चाहोगे.
So when you do that, here are the requirements for the king.
और यदि तुम ऐसा करोगे तो देखो राजा के लिए ऐसी ऐसी बातें अनिवार्य है.
Verse 15, you shall surely set a king over you whom the Lord your God chooses.
तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना. ये 15 वचन में लिखा है.
Make sure that God is involved in this choice.
इस बात की पूरी निश्चयता कर लीजिए इस चुनाव में परमेश्वर का हाथ है.
And he says, one from among your countrymen.
अब कहता तुम्हारे पीढ़ी में से एक को तुम राजा बनाना.
And in verse 16, he says, moreover, he shall not multiply horses for himself.
16 वचन में कहता है तुम अपने लिए बहुत घोड़े न रखना.
He's giving him a list of the things that he should not do.
प्रभु उस व्यक्ति को एक ऐसी सूची दे रहा प्रियो एक पट्टी दे रहा जिसको उसने नहीं करना है.
He said, you shall not multiply horses for yourself.
तू अपने लिए घोड़ों को अधिक न रखना.
Verse 17 says he should not multiply wives for himself.
और 17 वचन में कहता है कि बहुत स्त्रियां भी ना रखना.
None of the kings of Israel or Judah ever observed this.
प्रियो यहूदा या इस्राएल के राजाओं में से किसी ने भी आज्ञाओं का पालन नहीं किए.
They all multiplied wives.
वे सब के सब अधिक स्त्रियां करने लगे.
In that day they were all allowed to have wives except the king. They were all allowed to have multiple wives except the king.
Raja ke alawa samanya praja jo hai adhik striyan rakh sakte hain aisa kuch niyam tha.
Those who were called into leadership had a higher standard.
Lekin jo agwe banne ke liye bulaye gaye the unke jeene ka jo tare jo darja tha wo to uncha tha.
Nor shall he greatly increase silver and gold for himself.
Aur na wo apne liye sona aur rupaye adhik kare.
The king was not supposed to become personally rich.
Priyo, vyaktigat roop se raja aur praja se adhik dhanwan nahi hona chahiye.
In the United States, when people would go into Congress or the Senate, they would start out just as regular people and they would come out a few years later being extremely rich.
Aur priyo, America ki baat hai nahi, lekin hamare desh ki bhi baat hai. जब लोग कांग्रेस में हो या मंत्रिमंडल में प्रवेश करते हैं नेता बन जाते हैं तो थोड़े ही सालों में सामान्य प्रजा से अलग होकर बड़े ऊंचे हो जाते हैं.
I don't know if that ever happens in India.
Very true.
हमारे भारत देश में साथ ये थोड़ा और ही अधिक है.
Now let's look at what the king is supposed to do. We learned what he's not supposed to do. What should he do?
हमने पहले सीखा राजा को क्या नहीं करना चाहिए. अब हम सीखना चाहते हैं राजा को क्या करना है.
Deuteronomy chapter 17 verse 18 through 20.
Vyavastha vivran 17 adhyay 18 se 20.
Now it shall come about when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a copy of this law on a scroll in the presence of the Levitical priests. It shall be with him and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by carefully observing all the words of this law and these statutes, that his heart may not be lifted up above his countrymen, and that he may not turn aside from the commandment to the right or to the left, so that he and his sons may continue long in his kingdom in the midst of Israel.
और जब राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिनी मुड़े और न बाएं जिसमें कि वह और उसके वंश के लोग इसराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें. So before we learned what he was not supposed to do, now we see what he's supposed to do. पहले हमने सीखा राजा को क्या नहीं करना चाहिए, अब हमने ये पढ़ा कि क्या राजा को करना चाहिए.
It says, now it shall come about when he sits on the throne of his kingdom.
और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो.
When he sits on the throne of his kingdom.
जब वो अपने राज्य के सिंहासन पर बैठे.
Some people get a job some great job and they say, now I'm too busy to read the Word of God.
कुछ लोगों को जब बड़ी नौकरी मिलती है तो वो कहते हैं भाई मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि अब मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकता.
Are you busier than a king?
क्या हम राजा से भी अधिक व्यस्त हैं?
When he sits on the throne of his kingdom, he has to do this.
जब वो अपने राजगद्दी पर बैठे तब उसे ये काम करना है.
The busyness of life should not take us away from meditation on the Word of God.
जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए लेकिन परमेश्वर के वचन पर मनन करने का जो अभ्यास है उससे हम चूके नहीं.
Now you need it all the more.
अब तो और भी अधिक हमें चाहिए.
God has brought us up in position. We need His word all the more.
इसलिए कि परमेश्वर ने हमें एक उन्नत पद दिया है अभी हमको परमेश्वर का वचन और अधिक चाहिए.
Because now we have responsibility for our own life and for the lives of many others.
क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी केवल ना हमारे जीवन के लिए लेकिन औरों के जीवन की भी जिम्मेदारी है.
Some people say, oh, I got married, I'm just so busy right now.
कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी शादी हो गई है मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ.
Now you need it all the more.
लेकिन अब तो आपको और भी अधिक चाहिए.
Or they have one child and they say, oh, it's so busy, I don't have time anymore.
मान लीजिए एक बच्चा उत्पन्न हुआ तो कोर्ट कहते हैं मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ मेरे पास समय नहीं है.
Now you have a child. It's all the more important.
अब तो आप प्रभु ने आपको एक बच्चा दिया है अभी और आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है.
I remember when I was younger and I have four children now, but at the time I just had two daughters at that time.
अब तो मेरे चार बच्चे हैं लेकिन उस समय में केवल दो बेटियां थी मेरी.
One of my girls was four and the other one was one.
एक बड़ी बेटी मेरी चार साल की थी और दूसरी एक साल की.
And I used to pray over them at night and read them a scripture.
और तब उनके लिए मैं रात में वचन का भाग पढ़कर प्रार्थना करता था.
And I would pray for them before I left in the morning.
और सुबह घर छोड़ने से पहले मैं उनके लिए प्रार्थना करता था.
And one day my father-in-law was visiting.
मैं एक दिन मेरे ससुर जी सुन रहे थे.
He too was discipled by Brother Bhakt Singh.
वो भी भाई भक्त सिंह के द्वारा शिष्यता सीखे हैं.
And he said, Jim, I see your career, you're doing very well. I know you're very busy.
उन्होंने कहा, जिम मैं तुम्हारे करियर को देखता हूँ कि तुम बहुत अच्छे कर रहे हो और बड़े व्यस्त हो गए हो.
But you have to start putting the Word of God, the Word of God regularly into the lives of your children.
लेकिन परमेश्वर का वचन नियमित रूप से बच्चों के हृदय में आपको डालना पड़ेगा.
And to me, it was like the voice of Jethro, Moses' father-in-law.
मूसा के ससुर जी यित्रो के समान मेरे ससुर के शब्द मुझको सुन पड़े.
So at that time, I started to have a systematic study of the Word of God with my family.
और उस समय से लेकर मैं अपने परिवार के साथ पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू किया.
I would wake up very early in the morning and have my own quiet time.
भोर को ही उठकर मैं सबसे पहले अपना मौन ध्यान का समय पूरा करता था.
नाम मौन ध्यान समय
And then at 5 o'clock in the morning, I would bring my wife a cup of tea and her Bible so she could have her quiet time. I am not a prophet, but men, I think I hear many women thinking they wish they had the same thing from their husbands.
सुनने वाले बहुत सारे स्त्रियां सोचते होंगे जिनके समान मेरा भी पति होता तो कितना अच्छा रहता सुबह सुबह 5 बजे चाय बना कर दे
So from 5 to 5:30 my wife would have her quiet time.
5 से लेकर 5:30 बजे तक मेरी पत्नी अपना मौन ध्यान रखती थी
And then at 5:30 I would wake up the children and bring them to the family room.
और 5:30 बजे बच्चों को जगाता था और हमारा जो पारिवारिक प्रार्थना का रूम है उसमें ले आता था
And my wife would join us, and from 5:30 to 6 o'clock every morning, we would have family devotions.
हर सुबह 5:30 से 6 बजे तक हम अपना पारिवारिक प्रार्थना रखते थे.
I was very busy. My career was on a very sharp incline.
प्रियो, मैं अपने वैज्ञानिक पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त हो गया था, और मैं बड़ी तेजी से ऊंचाइयों को छू रहा था.
And I got a very good Bible storybook, and I would read it from Genesis to Revelation.
मेरे पास एक बाइबल कहानियों की बहुत अच्छी किताब थी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं बच्चों के लिए पढ़ता था.
And I would take scripture passages and I would memorize it with my children.
बच्चों के साथ पवित्र शास्त्र के उस छोटे भाग को मैं भी कंठस्थ करता था.
And when my boys were born, the same day we took them home from the hospital, we would wake them up in the morning and bring them into family worship.
जब मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए प्रियो, जिस दिन प्रसव होने के बाद हॉस्पिटल से घर आते थे हम बच्चों को उठाकर हम उसे फैमिली रूम में ले जाते थे
My wife would say, Papa, they're so young, let them sleep. I would say, No, I'd take them.
पत्नी कहती थी भैया ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं लेकिन मैं कहता था नहीं मैं खुद उनको ले जाता था
And as they could learn to speak, I would even begin to teach them the word of God.
और जब वो बोलना शुरू ही करते थे मैं उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाने लगा
And I would teach them from Psalm 23.
मैं भजन 23 से उनको सिखाता था
That was the first passage that all of my children would learn and memorize.
प्रियो, मेरे सब बच्चे वो वचन का पहला भाग है जो उनको कंठस्थ किया
And when they were very young, I would just say, The Lord is my, and then all they had to say was shepherd. That's it.
तब वो जो छोटे बच्चे थे खाली स्थान भरते थे मैं बोलता था यहोवा मेरा वो बोलते थे चरवाहा है
And I would say, you got it, beautiful.
और मैं कहता था कि बस तुमने सीख जा ऐसे ही सीखते हो
And I would say to the older ones, look how good he is.
और मैं दूसरों से बड़ों से बोलता था देखो तुम्हारे ये छोटे बच्चे छोटे भाई लोग कितने बढ़िया
And when we would learn passages, for example, and they shall mount up with wings like eagles.
और जब बड़े बड़े भागों में सिखाने लगा तुम उकाबों के समान उड़ते रहोगे
हाँ,
And I would climb on the couch and jump off.
और तब मैं अपने उस खाट पर खड़े होकर ऐसा कूद कर दिखाता था उनको.
And my wife would say, "Papa, stop! Not in the morning."
तब मेरी पत्नी कहती थी, "भैया, सुबह सुबह ये सब बंद करो."
And my children would jump up on the couch and jump off.
और मुझको मेरे पीछे मेरे बच्चे भी ऊपर से नीचे कूदने लगे.
That family worship time was a precious time.
पारिवारिक प्रार्थना प्रियो बड़ा बहुमूल्य समय है.
And then we would all get down on our knees and take turns praying.
और तब हम सब घुटने में आते थे और पारी पारी हम सब प्रार्थना करते थे.
And then I would lay my hands on each one in the family and bless them in the name of the Lord.
और तब मैं अपने हाथ को उनके सर के ऊपर रखकर एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देता था.
And then I would leave my house at 6 a.m.
और उसके बाद मैं 6 बजे अपने घर छोड़ता था.
Each day I left at 6 a.m.
हर रोज सुबह 6 बजे मैं छोड़ता था.
And I came home at 6 p.m. for dinner.
और फिर शाम को 6 बजे भोजन के लिए मैं घर आता था.
So I know what it is to work hard and have a career.
प्रियो, कठिन मेहनत क्या करना है और जीवन के करियर को कैसे आगे बढ़ाना है सब कुछ मैं जानता हूँ.
Hard work and a career need not take us away from the Word of God.
कठिन मेहनत परिश्रम करते हो और अपने जीवन का जो करियर बनाना चाहते हो वो आपको परमेश्वर के वचन से अलग नहीं करे.
To this day, I still rise up each morning at 3 a.m., even though my kids are grown and gone.
प्रियो, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे अपने-अपने घर में बसे हुए हैं, लेकिन तो भी मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ.
Then we would have dinner together at 6 p.m.
और तब शाम को 6 बजे हम साथ मिलकर भोजन करते हैं.
And as my wife would do the dishes, I would put the children to bed.
और तब जब मेरी पत्नी बर्तन साफ करती है और किचन को साफ करती है, मैं अपने बच्चों को सुलाता था.
Starting with the youngest, I'd get them to bed.
और छोटे से लेकर बड़े तक सबको मैं बिस्तर में सुलाता था.
And I would get on my knees and I would pray with them.
और घुटने पर आकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता था.
And I would sing Christian songs to them.
उनके लिए मैं अच्छे मसीही गीत गाता था.
And then I would go to the next one up in line, older, and put them to bed.
और तब मैं दूसरे के पास जाकर दूसरे को भी सुलाता था.
And then when they all got older, they would put me to bed.
और जब सब पूरे हो जाते तब मैं बिस्तर पर जाता था.
It is a blessed thing to have the word of God in a family.
परिवार में परमेश्वर के वचन को साथ मिलकर पढ़ना मनन करना बड़े धन्य बात है.
When my daughters were leaving the home, I asked them when they grew up and they were leaving the home, I said, "What are you going to remember most from our family time together?"
जब मेरी बड़ी बेटियां बड़ी होकर अपने अपने घर को जा रही थी तब मैंने उनसे पूछा हमारे घर के विषय में कौन सी वो बात है तुमको सदैव स्मरण आई.
They said the best thing we had was our family time in the morning together.
और वो कहते थे हम सदैव याद रखेंगे वो सबसे बढ़िया समय जब भोर को हम फैमिली प्रेयर करते थे.
भाई
Man lives by every word that proceeds out of the mouth of God.
मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा.
You want to bring life into your family? Bring the word of God in there.
यदि आप अपने परिवार में परमेश्वर के जीवन को लाना चाहते हैं, तो आप जरूर परमेश्वर के वचन को प्रवेश दें.
A king is very busy. We're never too busy for the word of God.
यो राजा को यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत उसके काम है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के विषय में वो बिजी नहीं है.
The next passage says, he shall write for himself a copy of this law on a scroll.
उस राजा के लिए अगली हिदायत तो दी गई है और वह अपने पास रखे और अपने और जब राजगद्दी पर विराजमान हो इसी व्यवस्था की पुस्तक का एक नकल अपने लिए बनवा ले.
He had to write his own copy.
उसको अपने लिए एक नकल बनवाना है.
Now I have so many Bibles.
अब मेरे पास कितने बाइबल हैं?
I have Bible on my computer, I have Bible on my iPad, I have Bible on my phone, I have Bible in books, so many Bibles.
मेरे पास किताबों में बाइबल है, मेरे iPad में बाइबल है, मेरे फोन पे बाइबल है, हर जगह बाइबल है.
He had to write himself his own copy with his own hand.
वो अपने हाथों से अपने लिए एक नकल बनवाना था उसको.
And he had to write his own copy of this on a scroll.
और उसको एक नकल अपने लिए बनवाना है.
You go into a synagogue, you will see the scroll, you will see the Torah, the first five books of the Old Testament on a scroll.
यहूदियों के आराधनालयों में यदि आप जाओगे तो वहां पर आपको ये सारे पच्चियां मिलेंगे और कम से तोरा जो है मूसा के पांच जो किताबें हैं वो एक प्रकार के रोल्स में स्क्रोल्स में आपको मिलता है.
And none of those scrolls are printed. They are all written by hand.
और जितने भी स्क्रोल्स हैं वो कोई भी प्रिंट नहीं किया हुआ है, हाथों से लिखा हुआ है.
To this day, you go in any synagogue anywhere in the world, you will find the Torah, the first five books of Moses on a scroll written by hand.
दुनिया के किसी भी यहूदी आराधनालय में चले जाइए, आपको तोरा की जो नकल है हाथ से लिखी हुई मिलेगी.
And when they do the weekly scripture reading in the synagogue, they roll it out on a big table to be able to read it.
और जब वो आराधनालय में हफ्ते में एक बार पढ़ने की क्रिया जब होती है तो वो उन पर्चियों को खोल कर सारे टेबल पर बिछा लेते हैं.
He would write his own copy on a scroll in the presence of the Levitical priests.
प्रियो जो लेवी उन दिनों में याजक को सेवा करते थे उनके हाजिरी में उस किताब को अपने हाथों से नकल बनवाए.
The Levitical priest would watch the king, make sure he didn't make any mistakes.
याजक लोग बड़े गौर से देखते थे कि राजा नकल करते समय कोई गलती ना करे.
What did it also do for the king? It taught him to be in the presence of the Levitical priests.
प्रियो ऐसा करते समय राजा भी इस बात को सीखता था कि मैं याजकों के और लेवियों के जो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं उनकी हाजिरी में हूँ.
राजा
You're a big great man, a big great woman in your company, good for you, but learn how to have fellowship with the people of God.
Priyo, aap apne company mein bahut bade padvi par hain, lekin parmeshwar ke logon ke sath sangati karna wo bhi seekhe. Ha,
ye log is jagah mein bache to company lo baitta sthan lo milo chahiye, deri prajal ko ye jitna sahaj nahi hona bhejni padegi.
It forced him to learn how to have fellowship with the people of God.
परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कैसे करना ये उसने बाध्य होकर सीखा.
Because the higher we go up in the world's eyes, the more in need we are to have fellowship with the saints.
दुनिया की दृष्टि से जितना हम ऊंचे दर्जे पर चढ़ते जाते हैं उतनी ही मात्रा में संतों की संगति की आवश्यकता बढ़ती जाती है.
Hebrews 10:25 says, "Do not neglect the fellowship of the saints, which is the habit of some, but all the more as you see the day drawing near."
इब्रानियों के 10:25 में लिखा है जैसे जैसे तुम प्रभु के आगमन को नजदीक आते देखते हो आपस में इकट्ठा होना ना भूलो कहता है.
Many of you young people are going to end up in high positions in companies. Don't forget to have fellowship with the people of God.
आप में से बहुत जवान हो जो आने वाले दिनों में कंपनी में बहुत बड़ी पदवी पर आ जाएंगे. प्रभु आपको ऐसी उन्नति देगा लेकिन परमेश्वर के लोगों की संगति को कभी ना भूलना.
In verse 19 it says, "It shall be with him, this scroll, it shall be with him, and he shall read it all the days of his life."
और कहता है ये व्यवस्था की जो प्रति है उसके साथ रहे और जीवन भर उसमें से वो पढ़ता रहे.
The scroll had to be with him.
ये जो पर्ची है व्यवस्था की नकल उसके संग रहे.
And the scroll wasn't like a little book or an iPhone. The scroll was big.
प्रियो ये जो स्क्रोल उसके पास था एक बहुत बड़ा है वो ये आईफोन के समान मोबाइल के समान नहीं है वो.
It had to be with him.
और ये उसके संग रहे.
He couldn't say, "Oh well, I didn't bring it with me." It had to be with him.
वो ये नहीं कह सकता अरे काम के कारण आज मैं उसको नहीं ले आ सका. उसके संग रहना है वो.
And it wasn't just a good luck charm. It says he was to read it all the days of his life.
कुछ लोग प्रिय मंत्र के समान कुछ ऐसे वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं. वो नहीं है ये कोई ताबीज के समान. हर रोज उसमें से पढ़े.
He could say, "Hey, you know, I'm busy. I got wars going on. I got famines. I got all sorts of things. I'm a busy man now."
Oh, लोग कह सकते हैं भैया मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ. परिवार को संभालना है, बच्चों को संभालना है, सामाजिक समस्याएं मैं कर नहीं सकता. हाँ,
मैं कब पता नहीं होता. दो दिन तो व्यस्त नहीं किया ना. ना तो एक दिन बात कर रहा है, दूसरा बात करते, समाज में बात कर रहा है.
No, he shall read it all the days of his life.
नहीं, जीवन भर. हर रोज उसको उस व्यवस्था की नकल में से पढ़ना है.
Why? Why should he do this? It says that he may learn to fear the Lord his God.
प्रयोग क्यों उसको पढ़ना है? ये सारे काम क्यों करना है? यहाँ पर उसका कारण बताया गया ताकि वह अपने परमेश्वर का भय मानना सीखे.
When we read the word of God, it teaches us the fear of God.
जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का भय मानना वो हमें सिखाता है.
We are not automatically born with the fear of God.
प्रियो अपने आप पैदाइशी परमेश्वर का भय मानना हमको नहीं आता.
We learn the fear of God through the Word of God.
केवल परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर का भय मानना सीखते हैं.
केवल देवी वाक्य वाला मात्र में देवी भय बताने में छोटा.
You start reading the Word of God and you say, "Uh-oh, I'm doing something wrong." God points something out in our life.
प्रियो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ते कुछ ऐसा वचन आया, एकदम मन खटकता है और कहते हैं, "ओह, इस विषय में मैंने गलती कर दी, अब इसको सुधारना है."
This is how God corrects us and keeps us out of trouble through meditation on the Word of God.
परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा इस रीति से आने वाले जीवन के समस्याओं से बचाकर वो हमें सुरक्षित रखता है.
And then it says that we may learn to fear the Lord as God by carefully observing all the words of this law and these statutes.
कहता है ना केवल वो उसका भय माने लेकिन इस व्यवस्था विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी रखे.
So as we read the Word of God, we must be careful to observe it.
प्रियो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस बात की चौकसी करें कि हम उसके वचन को मानना भी है.
Brother Bhakti Singh used to say, "When God speaks, we must obey. Obey quickly."
और जब भक्त सिंह भाई कहा करते थे, जब प्रभु हमसे बातें करता है, तो हमें तुरंत मान लेना चाहिए, तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए.
When we read something in the Word of God, we are to obey it quickly.
जब परमेश्वर के वचन में कुछ हम पढ़ते हैं प्रियो, तुरंत उसे मान लेना है.
People always want to delay. People always want to delay.
प्रियो अक्सर ऐसा होता है कि लोग उसको देर करना चाहते हैं.
This is part of the sinful nature of mankind.
प्रियो मानव जाति के पापी स्वभाव का भी एक भाग है.
It starts off from believing on the Lord. People just want to delay. Well, I'll make that decision at some later date.
देर करने की बात है, विलंब करने की बात जो यहाँ से शुरू होती है. प्रभु को यीशु मसीह पर विश्वास करना ठीक है, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, उस समय देखेंगे. ऐसा वो उसको देर करते रहते हैं.
But when the Lord points something out, we must obey quickly.
यदि परमेश्वर ने किसी बात को उंगली उठाकर दिखाया प्रियो, बिना विलंब किए तुरंत उसको मान लेना है.
Sometimes you're reading the Word of God and you realize, "Oh, I need to go and apologize to a certain person."
वचन पढ़ते समय कभी आपको महसूस होगा, आ भाई उस व्यक्ति के पास जाकर मुझे क्षमा मांगनी है.
Go and do it quickly.
तुरंत जाकर उसको पूरा करिए.
If you can do it in person, that's best.
यदि आप व्यक्तिगत रूप से जाकर करें तो बहुत ही बढ़िया है.
But if you can't do it in person, at least give them a call.
और प्रियो यदि आप व्यक्तिगत रूप से ना भेंट कर सके तो कम से कम फोन पर बुला लीजिए.
The worst way to do it is by texting them.
Oh, the worst way.
Worst way is just text.
प्रियो ये सबसे बुरा तरीका है. कभी कभी एक छोटा सा SMS कर देते हैं, सोचते हैं सब कुछ ठीक हो गया.
Verse 20 says that his heart may not be lifted up above his countrymen.
20 वचन, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने.
When you become the vice president of your company, it's very easy to become prideful.
प्रियो यदि आप अपने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो तो घमंड आना बहुत ही सहज है.
The word of God will keep you humble.
लेकिन परमेश्वर का वचन आपको नम्र बनाकर रखेगा.
There is something about pride as if it's written across our forehead.
कभी कभी प्रियो घमंड एक ऐसी बात है जो हमारे माथे पर लिखा हुआ ऐसा दिखाई देता है.
Everybody else can see it, but we cannot.
प्रियो हर कोई उसे देखता है लेकिन केवल मैं मुझे छोड़कर.
The word of God keeps us humble.
पर परमेश्वर का वचन हमें नम्र बनाए रखता है.
And that he may not turn aside from the commandment to the right or to the left.
और वो उन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं मुड़े.
If you stop reading the word of God, you will quickly start to go into sin.
यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दोगे, बहुत ही तुरंत पाप में गिर जाओगे.
It doesn't take any time at all to start moving into sin when we neglect the word of God.
परमेश्वर के वचन को जब निर्लक्ष करते हो, आपको समय नहीं लगेगा पाप में फंसने के लिए.
For nearly 40 years, I have read the scriptures every day, every day.
40 साल हो गए, हर रोज मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ.
And he finally says, so that he and his sons may continue long in his kingdom in the midst of Israel.
अंत में कहता है ताकि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के बीच में बहुत दिनों तक जीवित रहे.
If you read the word of God every day, it will bring blessing to your children.
यदि आप परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ते हो प्रियो, वो आशीष आपके बच्चों पर आ पड़ेगी.
Psalm 112, verse 1 and 2.
भजन संहिता 112 उसका 1 और 2.
Praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The descendants of the upright will be blessed.
भजन संहिता 112, 1 और 2. याह की स्तुति करो. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है. उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा. सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी.
The best thing that you can do for your children is for you to be in the Word of God.
बच्चों के विषय में यदि आप कोई अति उत्तम बात करना चाहें प्रियो, श्रेष्ठ बात यही है कि आप परमेश्वर के वचन को मनन करें.
If you greatly delight in His commandments, your children will be mighty on this earth and they will be blessed.
परमेश्वर के वचन में आप यदि अति आनंदित रहोगे तो इस पृथ्वी के ऊपर आपके बच्चे बड़े आशीष पाएंगे.
That is the promise of the Lord.
ये परमेश्वर से प्रतिज्ञा है.
His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed.
प्रियो कहता है वो खरी प्रजा की जो संतान है, सीधे चाल चलने वालों की जो संतान है, वो अधिक आशीष पाएंगे.
Do it for your children's sake.
बच्चों के कारण, कम से कम अपने बच्चों के लिए आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ें.
Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
मनुष्य न केवल रोटी के द्वारा जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन के द्वारा.
And then when we meditate on the word of God, blessing falls upon our children.
जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे बच्चों पर आ पड़ेगी।
May we obey the word of God.
आइए हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा माने।
I'm done. We pray. Let me pray, please. Okay. Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें।
Abba Father, I thank you.
Abba Pita, main aapka dhanyawad karta hu.
Thank you, Lord, for the word of God. We live by every word that proceeds out of your mouth. And Lord, I pray for these blessed children here. Father, I lift up to you these precious ones, every man, woman, and child here. That they would remember this word. And make the word of God their daily meditation. Father, that you would bring blessing upon these homes according to your promise. As they follow the word of God. Father, I pray for those here who had their heart touched. To start meditating on the word of God each morning. And to start bringing their family around the word of God each morning. Father, that you would strengthen homes because of this word. Father, for the marriages that are having troubles, Lord, bring them strength. That as the reading of the word comes in, that the blessings of God would flow upon those marriages. Lord, bring your blessing upon the children that are represented by these parents here. And Father, for these young people that are not yet married, that as they start their families, they would start it around the Word of God. Father, that you bring life according to your word. And Father, for the unbelievers that are in this tent, that they would pray right now, Lord, forgive me because I am a sinner. Lord, forgive me for sinning against you. I believe Jesus is the Son of God. That He was crucified for my sins. And that He rose from the dead. Lord, come into my life. Lord, I pray for the young women in this room. Father, you know their joys or their struggles or their pains. Father, bring them refreshment through the Word of God. Lord, let the Word of God speak into their lives each morning. That out of their innermost being will flow rivers of living water. Father, I pray for the young men in this room. That as they meditate on the Word of God, that they would have victory over sin. Father, give them a love for the Word of God. And Lord, I pray for the older men in this room. That they would pick up the Word of God in a new and a fresh way. And say, Lord, speak to me through your Word. And Father, I pray for the older women in this room. That they would be so filled with the Word of God that they would be a blessing to many. Our Lord Jesus Christ be glorified in this place, I pray. The covering of the blood of Jesus be over this place. Protect from fires or from attacks. Father, your protection be over this camp. May many come to know you through this meeting time. And may many believers be strengthened up in their spirit through this time. And Lord, I commit all this to you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.